नमस्कार, प्रिंट पॉड के सुप्रभात वर्जन में आपका स्वागत है। आज मैं शिव पांडे पढ़ रहा हूं भद्रा सिन्हा की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने देशद्रोह कानून को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की, लेकिन उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी करने की भी रिक्वेस्ट की। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी कि वो केदारनाथ मामले में अपने 1962 के उस फैसले की पुनर्समीक्षा न करें जिसमें भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था। धारा 124A देशद्रोह की सजा का प्रावधान करता है, लेकिन वेणुगोपाल ने माना कि इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए शीर्ष अदालत की ओर से दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। इस तरह के दुरुपयोग के एक उदाहरण के रूप में उन्होंने पिछले महीने सांसद नवनीत कौर राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी का हवाला दिया। इस मामले में इस दंपत्ति ने पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना बनाई थी और फिर उसे रद्द कर दिया था। वेणुगोपाल ने कहा कि इस दुरुपयोग को नियंत्रित करना होगा और इस अदालत को इस बारे में दिशा निर्देश निर्धारित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि माई लॉर्ड्स ने देखा है कि इस देश में क्या हो रहा है। हाल ही में किसी को सिर्फ इस बात के लिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे। हालांकि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन ये ऐसे उदाहरण हैं जिन पर योर लॉर्डशिप को विचार करना चाहिए और धारा 124A के मामलों में लागू होने वाले दिशा निर्देशों को निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत किस बात की अनुमति है और किस बात की नहीं है, जिसे राजद्रोह के तहत शामिल किया जा सकता है। वेणुगोपाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI NV रमन्ना की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हेमा कोहली शामिल थे, उसके समक्ष अपनी दलीलें दी। इस पीठ ने आईपीसी की धारा 124A की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के एक बैच को अपने अधिकार में ले लिया है। वेणुगोपाल इस मामले में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में पेश हो रहे हैं और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों में इस मामले को एक बड़ी पीठ को सौंपने की मांग की थी। चूंकि केदारनाथ मामले का फैसला 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया था, मगर उनके वकील ने गुरुवार को तर्क दिया कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और 3 न्यायाधीशों की पीठ भी इस मुद्दे को सुनने के लिए सक्षम है। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने इन याचिकाओं पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए और समय मांगा। मेहता ने कहा कि उन्हें अभी सक्षम अधिकारियों के जवाब का इंतजार है। पीठ मेहता की मांग को समायोजित करने के लिए तो सहमत हो गई, लेकिन इसने उन्हें ज्यादा मोहलत नहीं देने का फैसला किया। CJI रमन्ना ने सुनवाई के दौरान केंद्र के रुख पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि लगभग 10 महीने पहले नोटिस जारी किए गए थे और कुछ मामलों में तो नोटिस बहुत पहले जारी कर दिए गए थे। पीठ ने मेहता को सोमवार तक अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी और याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की। इसने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को पहले अपने तर्क से पीठ को संतुष्ट करना होगा कि क्यों इन याचिकाओं को एक साथ न्यायाधीशों की पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है और कैसे 3 न्यायाधीशों की वर्तमान संरचना धारा 124A के मुद्दे की संवैधानिक वैधता पर उसकी सुनवाई के लिए सक्षम है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र दोनों को इस सीमित मुद्दे पर शनिवार सुबह तक लिखित में अपना पक्ष रखने को कहा। वेणुगोपाल ने अदालत के कहने पर अपनी प्रारंभिक दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि 1962 के केदारनाथ मामले का फैसला एक अथॉरिटेटिव फैसला था, जो देशद्रोह पर बने कानून के पूरे इतिहास का पता लगाता है। इसने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के उस फैसले को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि सरकार के खिलाफ किसी भी भाषण, चाहे वो हिंसक प्रवृत्ति का न भी हो, तो भी उस पर धारा 124A लागू होगी। वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से पहले वाले भारत के संघीय न्यायालय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि यह बेहद खतरनाक था क्योंकि आप किसी सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन केदारनाथ मामले के फैसले ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया और संघीय न्यायालय के फैसले का विकल्प चुना, जिसका अनुच्छेद 374(2) के अनुसार सभी अदालतों पर बाध्यकारी प्रभाव पड़ा। यह अनुच्छेद कहता है कि संघीय न्यायालय के फैसले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के रूप में माना जाएगा। फेडरल कोर्ट के फैसले में, जो प्रिवी काउंसिल के फैसले से पहले दिया गया था, उसमें यह माना गया था कि किसी भी रूप में दिया गया भाषण, चाहे वो विरोध प्रदर्शन में या सड़क पर या रैली में हो, उस पर धारा 124A को तभी लागू किया जा सकेगा जब ये हिंसा को उकसाए या जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा हो। इसके वर्तमान प्रयोग के बारे में बोलते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि राज्य धार्मिक संघर्ष और अन्य घटनाओं के लिए इसका उपयोग करके इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, भले ही इसके परिणाम स्वरूप किसी तरह की सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न होने का खतरा न हो। उन्होंने अदालत से पूछा कि ऐसे मामलों में अदालत के सामने ये सवाल उठता है कि क्या कोई कानून जो अपने मूल रूप में वैध है लेकिन जिसका दुरुपयोग और दुष्प्रयोग किया जाता है तथा इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले तरीके से लागू किया जाता है, तो क्या वो ये खराब कानून है? सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे प्रिंट पॉड सुप्रभात के एक नए एपिसोड के साथ।